તારીખ 29/7/1997 ડાયરીના બોલ નંબર 154 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 101
और चालू परिणमन में मार्ग की समीपता और इस प्रकार की मुमुक्षुता की वर्तमानता होवे, किस कारण से? कि पूर्णता का लक्ष्य होने से, आत्मकल्याण का लक्ष्य होने से, पूर्व काल के भूतकाल के मुकाबले में सुधार हुआ दिखे, सुधार दिखे तो उससे संतुष्ट नहीं होवे। आत्मार्थ ही यथार्थ होता है, उसे संतुष्ट नहीं होगा, परंतु वो सब बात गौण हो जाएगी। जो भी विकास हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, ये गौण हो जाए तब तो यथार्थ है। ये यथार्थता का लक्षण है। और ऊपर ऊपर की दशा का अभिलाषा रहा करे, कहां तक कि पूर्ण दशा की अभिलाषा रहा करे, क्योंकि पूर्णता का लक्ष्य है। तो पूर्णता के लक्ष्य में ये फायदा है कि वर्तमान का प्रोग्रेस की मुख्यता नहीं आएगी, या संतुष्टपना भी नहीं आएगा, वरना आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि पूर्व से सुधार हुआ, भूतकाल से सुधार हुआ, जैसे पहले हम व्यवसाय करते थे, अब व्यवसाय छोड़ दिया और इस तत्वज्ञान के क्षेत्र में हमारा प्रवेश हो गया, ब्रह्म तत्व की चर्चा आदि करने लगे, तो हम कंपैरिजन करेंगे। पहले तो हम बहुत लगे रहते थे धंधा व्यापार में, अब तो ये तत्वज्ञान का ही भाव आता रहता है, तो इतना फर्क तो हुआ ने कि गिनती किया, उसमें संतुष्टपना हुआ और इसकी मुख्यता हो गई। वही इस विषय की अयथार्थता है।
ऐसा होने
का लक्ष्य पूर्णता का नहीं किया, पूर्णता का लक्ष्य क्या, तो कुछ लगेगा ही नहीं। अभी क्या है, अभी तो पासे रुई में पहली पुणी भी नहीं है, और गुजराती में कहते पासे रामा पहली पुणी नहीं। जो रुई की पुणी होती है ना, जो सूत काटने में, तो उसमें तो पासेर 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 मैंने पाव 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 भर उसमें इतनी होती है, उसमें एक का क्या, पहली 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 में क्या क्या वजन आएगा, अभी तो इतनी रगाओ तब तो पावसर होगी, पावर होगी। यही लगेगा, सही शुरुआत होगी और लगेगा कि ये तो पाव भर में पहली पुणी भी नहीं है, वरना ऐसा लगेगा खाई देखो इतना हुआ, देखो इतना हुआ, पहले ऐसा नहीं हुआ था अभी ऐसा हो रहा है, पहले इतना नहीं हुआ था अभी ऐसा हो रहा है, ये बात आए बिना रहेगी नहीं। इसलिए जो भी आए उसको गिनो ही मत, उसको गिनो ही मत, ख्याल आ जाएगा तो ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन साथ ही ख्याल में रहेगा गिनना नहीं है उसको, क्योंकि वो तो पाव भर में पहली पुणी भी है। इस तरह से गुण महिमा और यानी गुण गुणों की मुख्यता किसकी है, है? दूसरों के, अपना गुणों की मुख्यता नहीं, दूसरे मुमुक्ष में कुछ भी गुण दिखे तो उसका उसके मुख्यता करे, उसका प्रमोद करे, वो प्रमोद को महिमा को, देखो ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, उसमें वो अच्छा है। मनुष्य है वो गुण दोष का पुतला है, मिश्रण वाला। सर्वगुण संपन्न मनुष्य नहीं होता, सर्वगुण संपन्न तो देवाधिदेव सर्वज्ञ है, मनुष्य नहीं है। अब हम गुण को मुख्य करेंगे तो हमारे लाभ की बात है, दूसरे के और दूसरे के दोष को मुख्य करेंगे तो हमारे नुकसान की बात है। तो हमको तो हमारे लाभ का रास्ता पकड़ना है। हमको कैसे लाभ होता है वो ही हमको देखना है। दूसरे के दोष से हमको तो नुकसान होने वाला है नहीं, फिर हम क्यों देखें? तब देखेंगे तो परलक्ष का बड़ा दोष हमारे में आ जाएगा, इसका बड़ा नुकसान हमको होगा, इसका क्या? अगर हमारा परलक्ष होता है तो इसके गुण पर लक्ष जाओ, हमारा दोष पर क्यों? जब बात दोनों है, कोई सर्वदोषी होता है वो बात भी नहीं है, पर कोई सर्वगुण संपन्न होता है वो बात भी है ही नहीं। किसी में कुछ अच्छाई है, किसी में कुछ अच्छाई है, किसी में कुछ अच्छाई है। हमको अच्छाई को देखना है, वही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, वो हमारी दृष्टि हो जानी चाहिए। और वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, उस सामने वाले के लिए कुछ नहीं। हमको किसी का सर्टिफिकेट लिखना नहीं है, क्योंकि वो अधिकार हमारा नहीं है। दूसरों को सर्टिफाई करना ये अनधिकृत बात है हमारे लिए, वो अधिकार हमको मिला नहीं है, इसलिए हमको अधिकार का उपयोग करना नहीं है, हमारे लाभ के लिए देखना है, बस उतने से बात है। दूसरे को दोष देखने में तो परलक्ष तीव्र हो जाएगा, पर बढ़ जाएगा, तीव्र हो जाएगा, और पर रुचि बढ़ जाएगी, ज्ञान का विवेक छूट जाएगा, निर्मलता छूट जाएगी, सब नुकसान आ पड़ेगा। और सत्संग खत्म, सत्संग की कुछ इफेक्ट आई हो सत्संग के दौरान, उसकी धुलाई हो जाएगी। तो ये समझना चाहिए कि आज तक तो नुकसान किया अज्ञानता से, ना समझ से बहुत नुकसान किया, अब नहीं करना है, इस तरह से लेना। सत्स्वरूप की उंडी जिज्ञासा के कारण से सर्वोदय प्रसंगों में चित्त नहीं लगे और निरसपना आ गया हो तो सही आत्मार्थी है। सत्स्वरूप की जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए, मेरा स्वरूप कैसा, जिस स्वरूप के आधार से सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद दशा सहज मात्र में उत्पन्न होती है, उस स्वरूप कैसा होगा, उसकी बहुत उंडी उंडी जिज्ञासा रहनी चाहिए। तीव्र जिज्ञासा रहने से कहीं भी चित्त किसी भी संसार प्रसंग में रस नहीं आएगा, चित्त नहीं चौकेगा, चित्त लगेगा ही नहीं। अभी एक बात सुना रहे थे शैलेश भाई वगैरह, इसका पड़ोस में श्वेतांबर रहते हैं, मूर्ति पूजक, आजकल अपने स्वाध्याय में आते हैं, काफी पड़ गया है, तत्पद क्रिया कांडी थे, सुबह 5 बजे से सामयिक प्रतिक्रमण में लग जाए और मंदिर में पूजा करने को लग जाए, 11 बजे तक चले उसका 6-6 घंटा क्रिया। अब सब छोड़ रहे हैं, हाँ कर्म छोड़ दिया, तो काफी इफेक्ट आई है और बहुत उपकार मानते हैं कि पड़ोस में आ गए तो ये लाभ हमको हो गया, वरना हम तो उसमें घुस गए थे, इतना माथा बूढ़ पानी में थे। छोटी उम्र का आदमी है तो उसका जो साला था, हीरा का काम करता है, उसको काम के हिसाब से भेजा था अपने वतन में, तो उसके जेब में 5 लाख के हीरे थे और इन दिनों में बारिश हुई बहुत, इसके वतन में इतनी बारिश हुई कि जिस बस में वो सफर कर रहे थे वो बस आगे चली नहीं, सब पैसेंजर को उतरना पड़ा, इतने पानी में, इतने इतने पानी में चल करके एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाना, 3 दिन तक चला, ऊपर से पानी गिरे और नीचे इतना पानी, तो रात दिन चला, 3 दिन खाने को नहीं मिला, पानी तो ऊपर से जो पानी आता था नीचे तो गंदा पानी होता है, मिट्टी वाला होता है, वो तो पिया नहीं जाता, ऊपर के पानी पीते थे जब जब पिया लगते थे। तो उसके जो माँ बाप थे उसको मालूम था कि वो निकला है, पहुंचा नहीं, 3 दिन तक वो माँ बाप ने खाए नहीं और नींद लिया नहीं, इकलौता बेटा था, 4 लड़की थी और 1 लड़का था, 4 बहन का 1 ही भाई था, जवान आदमी था, 3 दिन तक पता कोई कांटेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं रहा, सब पानी पानी, छोटे छोटे गांव में पानी पानी, कोई कांटेक्ट करने का साधन नहीं था। तो इसके माँ बाप ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, नींद नहीं लिया, ये हालत हो गई उसके लड़के के कारण से। लड़का का क्या हुआ, कहाँ होगा, क्या हुआ होगा, जिंदा होगा कि नहीं होगा, आत्मा की चिंता ऐसी लगे तब तो काम होगा। ये भी खो गया है, आत्मा संसार में खो गया है, तो ये सहज होता है, यथार्थ समझ में ये सहज होता है। आज ही वो सुना रहे थे, देखो ऐसा हुआ था, बच गया, 3 दिन तक तो टेंशन ऐसा रहा, ऐसी लगे नहीं वहां तक दर्शन वो गलता नहीं, अनंत काल से इतना प्रगाढ़ दर्शन वो कर दिया है, वो दर्शन वो की ग्रंथि गले कब, वो बात है। और गलती नहीं है तो उल्टा नहीं, कहीं न कहीं दर्शन में बढ़ा रहे हैं, जैसे दूसरों में अपनत्व करके, संयोग में अपनत्व करके वो तो बढ़ा ही रहे हैं, या तो तोड़े गाले या तो दृढ़ करे, दो से एक ही बात होती है। ऐसा नहीं हो रहा है तो मंथन चलना चाहिए अपने लिए, हमको क्यों नहीं हो रहा है, हमारे परिणाम कहाँ लगते हैं तो इधर नहीं लगते हैं, ये वास्तविकता में क्यों नहीं लगते, किस कल्पना में हम चल रहे हैं, उसका मंथन चलना चाहिए।
અર્થ ઉદ્બલ પરાવર્તન હોય તો પણ એ ભટકા છે એમ નથી કહેતા. સમય લાગે પણ જેનું ભટકવા પણ હું મટી ગયું એને સંતોષ થયો. એક માનસિક ભીખ માગતો ભટકી ભટકી અને રોટલો માગી લાવે અને એનાથી ભરણ પોષણ કરતો હોય રોજની રોજ કઈ આજે લાવે તો ખાય ન લાવે તો કઈ એવા નીકળે તો પેટ ભરાય ન લાવે તો ખુશો રહે. એના મન પર 1,00,000 રૂપિયા મૂકા પડ્યા. હવે આ 1,00,000 રૂપિયા છે એ તને એક વર્ષના પછી મળશે પણ એ પછી એ તમે આપશું તો એનું ભટકન મટી ગયું. ભટકનનો જે હતું કાલે શું એ માનસિક રીતે મટી ગયું. એ શું કરે? એક વખતે મહિનાનું સીધું દેવું કરે, હિંમત આવી પેલા પૈસા આપવાના છે માટે દેવું પડે અને મહિનાનું સીધું ભરે પડ્યું, વર્ષનું ભરે પડ્યું. એટલા ઓછા એને જઈને આટલા આપ્યો તો આટલા તો આવશે. ભટકન મટી શકું. આપણા ક્વેશ્ચન કર્યા છે પ્રશ્નો છે એમના બેઠા એટલે એ પ્રશ્નો આપણે કોઈ પણ આત્મા ઉદય કર્મને ભોગવતા સમશ્રેણીમાં પ્રવેશ કરી અબંધ પરિણામે વર્તશે તો ખચી ચેતન શુદ્ધિ પામશે. આટલો જ પ્રશ્ન મૂક્યો છે. પ્રશ્ન આટલી વીતી છે એ એમનો પ્રશ્ન છે. એ હતા લીટી છે એ પ્રશ્ન છે. આટલું મોટું એક પેરેગ્રાફ જેવું લખાણ હોય, લખાણ મોટું હોય, પ્રશ્ન પછી કેટલો નીકળે લીધે લખાણ મોટું હોય, પ્રશ્ન નીકળે લીટી જેટલો. નાનો કે ભાઈ આ એનો પ્રશ્ન થાય છે. આ તો લીટી જેટલું લખાણ છે, લીટી જેટલા લખાણ નો પ્રશ્ન છે. એક લીટીનું લખાણ છે અને એનો પાછો પ્રશ્ન. કોઈ પણ આત્મા ઉદયકરને ભોગવતો, ઉદયકર્મ એટલે ઉદયકર્મ એટલે જે ક્રમશઃ કર્મ વધેલો હોય એ પ્રમાણે જે કર્મ ઉદયમાં આવે અને એ ઉદયમાં આવેલા જે કર્મને આપણે ભોગવીએ છીએ એ ઉદય કર્મ. કેટલા કર્મ? ઉદયના ઉદયના કરીને આપણે અત્યારે અહીંયા બેઠા છીએ, શાંતિથી બેઠા છીએ, કમ્ફર્ટ કરી એટલું એટલું ઉદયના ઉદયના મંદી પડી કર્મ શાંત થયું પણ કડતા ઉભા રહો તો ઉદયના થાય. કરતા બેસો જાણી ગયું. તમે અહીંયા થોડા બેઠા છો, કોઈ તમને એમ કહેતું નથી કે તમે તડકા બેસો. એક તો તમે છોડા બેઠા હોય તો તમને કોઈ બંધી અને ઝાડ એ બધા તરા બાંધી નાખશે. તમારી ઈચ્છા ના હોય તો પણ તડકામાં ઝાડ હોય અને ઉપર છડો ન હોય એવું થડિયું હોય ને એનું થડ, હા એ થડે તમને વધી જાય તડકામાં. અને એક તો તમારી ઈચ્છાથી તમે તડકામાં જઈને ઉભા રહો, પેલો ઉદય છે તડકામાં તમને જે વધી દીધા અને તમને ગમતું નથી એ ઉદય છે. અને તમે તમારા ઈદારા પૂર્વક ઈચ્છાથી તડકે જઈને ઉભા રહ્યા એ ઈદી ના. એ પ્રમાણે કોઈ પણ જીવ, કોઈ પણ આત્મા ઉદય કર્મને ભોગવતો, ઉદય એટલે રાબેતામાં છે, તડપર ઝાડ સાથે બાંધે એમ નહીં, તડપર ઝાડ સાથે બાંધે એ બરાબર, પણ એની ઈચ્છાથી નહીં. એની ઈચ્છા એ તડપર કોઈ તકલીફમાં ના ઉભો રહે, પણ કોઈ ભગવાને ફરજ પાડે તો ભોગવવું પડે, એને ઉદય કહેવાનું. અને એ ઉદયને આપણે અટકાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપણી શક્તિ મુજબ, મનથી અને એના ઉપચારથી. એમાં સફળતા કેટલી મળે કે આપણા હાથની વાત નથી. એ કર્મનું જેટલું જે સ્થિતિ જે પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે દવા અને એનું નિમિત્ત એને અનુકૂળ થાય. પણ એમાં જે ભોગવટો છે કર્મનો, જેટલો સમય છે એટલા સમય એ કર્મ સાતાનું વર્તાય, સાતાનું સાતાનું હોય કે અસાતાનું બંને, એટલો અસાતાનો લેવાનો સાતાનું કર્મ બાધક નથી. એમ જે જે કર્મ, જે કર્મ ઉદય કર્મ, તો અસાતાનું તો આપણને બાધક થાય, પણ સાતાનું કેવી રીતે બાધક થાય? સાતાનું કર્મ આપણને બાધક કેવી રીતે થાય? સાતામાં આપણને એના પ્રત્યે રાગ થાય, એ ગમે, એના માટે આપણને સુખની જેની કામનાઓ થાય, કામ મજા આવે છે, આનંદ આવે, પહેલાંમાં જે ગમતું નથી એવા જ એના વિપરીત ભાવ, પરસ્પર વિપરીત ભાવ. આ ગમે છે અને આ નથી ગમતું, આ નથી ગમતું એ નજરમાં આવે છે, ગમે છે એ નજરમાં આવતું નથી, ગમે છે એ પણ ભાવ છે એ નજરમાં નથી આવતો, પણ નથી ગમતું એ નજરમાં આવે છે. તો કોઈ પણ ઉદયી ભાવ સારો અથવા નકારો કર્મને ભોગવતો, સમશ્રેણીમાં પ્રવેશ કરી દીધો. અહીંયા એક આ વાત એમને મૂકી દીધી, આડું હોવું તો ચાલતું જ નથી, મોક્ષ માર્ગ જોઈતો હશે તો તમને બધી વાત કરીએ છીએ, પણ એક વાત જે મહત્વની છે એ આ ઉમર ક્યાંય ચૂક્યા નથી, એનાથી એમની વાણીની અને એ પુરુષની કિંમત છે. બે વાતો આમ કરી હોય, બે વાતો આમ કરી હોય તો કોઈ નહીં, પણ ક્યાંય એમના લખાણમાં કે વાણીમાં ક્યાંય એ ચૂક્યા નથી આ આ વાત કહેવાની. એક લીટીની વાતમાં પણ એમને આ વાત તો મેં કરી, શું વાત કરી?
સમત્વ શ્રેણી.
હા, સમત્વ શ્રેણીમાં પ્રવેશ કરી અબંધ પરિણામે વર્તશે, અબંધ પરિણામે વર્તશે. પણ અબંધ પરિણામ ક્યારે વર્તી શકે? સમત્વ શ્રેણીમાં આવે તો. એ સિવાય કોઈ જીવ અબંધ પરિણામે વર્તી શકે નહીં. અબંધ પરિણામે વર્ત્યા સિવાય, એટલે અબંધ પરિણામે વર્તશે એટલે અબંધ પરિણામ થાય ત્યારે એનું ફળ શું આવે? તો ખચિત ચેતન શુદ્ધિ પામશે. તો ચોક્કસ થી તે ચેતન સુધી એટલે આત્મ પરિણામ ને આમાં શું ન સમજાયું તમને કહો એટલે ફરીથી હું એ વાત કરું. મારે કેવી છે, મારે વાત કરવી છે પણ તમને ક્યાં ગૂંચવણ પડી? સમત્વ શ્રેણી, હા હા સમત્વ શ્રેણી બરાબર.